नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कांग्रेस का राज्यसभा प्रत्याशी पर मंथन तेज, मुख्यमंत्री की दिल्ली में आलाकमान से चर्चा जारी। नाहन में आज युवा संसद का होगा आयोजन, युवाओं को केंद्रीय योजनाओं के अलावा मिलेगी लोकतांत्रिक मूल्यों व संसदीय परंपराओं की जानकारी। किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर में जन औषधि सप्ताह शुरू। और आगामी वर्ष होने जा रही डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना को लेकर शिमला में प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए 16 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। गौरतलब है कि इसी क्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचकर कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में पार्टी हाईकमान के साथ आज एक अहम बैठक भी होनी है। प्रदेश से राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते ये सीट खाली होगी। चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 5 मार्च निर्धारित है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि एक या दो दिन के भीतर कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा कर सकती है। भारत सरकार युवा मामले व खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत द्वारा की ओर से आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं व राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना है। युवा संसद में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के युवा भाग लेंगे। इस दौरान युवाओं को केंद्र सरकार की मुख्य योजनाओं से अवगत करवाया जाएगा और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना जिले ने बीते वर्षों में विकास की नई पहचान बनाते हुए औद्योगिक, शैक्षणिक और आधारभूत ढांचे से विकास के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वे कल ऊना में हिमोत्कर्ष साहित्य, संस्कृति व जन कल्याण परिषद के 52वें राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 2,500 करोड़ रूपये की लागत की बल्क ड्रग पार्क योजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का ऊना में स्थापित होना प्रदेश के लिए गर्व का विषय है और इससे न केवल औद्योगिक परिदृश्य को नया आयाम मिलेगा, बल्कि राज्य फार्मा क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करेगा। मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के विकास, विस्तारीकरण व सौंदर्यकरण के प्रथम चरण के कार्य के लिए 130 करोड़ रूपये की राशि भी उपलब्ध करवा दी गई है। इस दौरान उन्होंने हिमोत्कर्ष साहित्य, संस्कृति व जन कल्याण परिषद के संस्थापक कंवर हरि सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली विभूतियों और संस्थाओं को हिमोत्कर्ष राष्ट्रीय एकात्मकता पुरस्कार व हिमोत्कर्ष हिमाचल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया जन औषधि सप्ताह 2026 बीते कल देश भर में स्वास्थ्य जांच शिविरों के साथ शुरू हुआ। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सप्ताह भर चलने वाला ये उत्सव 8वें जन औषधि दिवस तक चलेगा। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत औषधि विभाग द्वारा इस महीने की 5 तारीख तक देश भर में 250 से अधिक स्थानों पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
कार्यक्रम के पहले दिन देश भर में लगभग 50 स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में सामान्य स्वास्थ्य जांच और अन्य सेवाएं प्रदान की गई, जिनमें मुफ्त रक्त परीक्षण, रक्तचाप और थायराइड परीक्षण शामिल है। शिविरों में जन औषधि की दवाओं का मुफ्त वितरण भी किया गया है। कई केंद्रों पर फिजियोथेरेपी परामर्श, नेत्र जांच और बाल स्वास्थ्य संबंधी पहल जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी आयोजित की गई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। सरकार ने वर्ष 2027 तक इस नेटवर्क को 25,000 केंद्रों तक विस्तारित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिससे किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की अंतिम छोर तक पहुंच को मजबूत किया जा सके। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं रीना वर्मा।
ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस संदेश के बाद। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी के समाचारों में, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 84 और नई पंचायतों का गठन किया जाना है, जिसके लिए आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। 3 दिन के भीतर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। पंचायती राज विभाग से संबंधित जिला के उपायुक्तों और विकास खंड अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रस्तावित पंचायतों की सीमाओं और नामों को लेकर स्थानीय स्तर पर राय ली जाए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बढ़ती आबादी, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई पंचायतें बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी ताकि चुनाव समय पर करवाए जा सकें। भारत की आगामी जनगणना वर्ष 2027 में होने जा रही है, जो पूर्णतः पहली डिजिटल जनगणना होगी। यह कार्य डाटा संग्रह मोबाइल ऐप व वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व त्वरित बनेगी। आगामी जनगणना के लिए प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना को लेकर जिला शिमला में इन दिनों प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित होती है। वर्ष 2011 के बाद अगली जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। अब जनगणना 2027 में 2 चरणों में आयोजित होगी। हिमाचल प्रदेश में भी 2 चरणों में 12 मई से 11 जून 2026 और फरवरी 2027 में जनगणना प्रस्तावित है। स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पोर्टल निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व सक्रिय होगा। कोई भी नागरिक लॉगिन कर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेगा। इसके बाद उसे स्वगणना आईडी प्रदान की जाएगी, जिसका सत्यापन प्रगणक द्वारा किया जाएगा। आगामी जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी, जो वर्ष 1872 से 16वीं एवं स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
राजकीय प्राथमिक अध्यापक फेडरेशन ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई क्लस्टर प्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी मुद्दे को लेकर कल प्राथमिक शिक्षकों ने प्रदेश भर में रोष प्रदर्शन किया। शिक्षकों का मुख्य विरोध इस प्रणाली से उनकी पदोन्नति के अवसर खत्म होने और प्राथमिक शिक्षा ढांचे के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर है। चंबा में रोष प्रदर्शन के दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमेश बिजलवान ने कहा कि इस प्रणाली को लेकर शिक्षकों ने कई बार मुख्यमंत्री से बातचीत की, लेकिन उनकी मांगों को हर बार अनसुना किया गया।
अब मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और हिमाचल सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो खामी है उसको पूरा करने के लिए हमें जल्द वार्ता पे बुलाए। हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो CST और BPO की जो शक्तियां वो यथावत रहे, कंसोलिडेशन जो करने जा रहा है सरकार वो करती रहे कि समय रहते इस पर वार्ता की जाए। नहीं तो अगर सरकार ने अभी भी हमारी जो आग्रह रैली आग्रह को स्वीकार नहीं किया तो हम इसके बाद एक बहुत उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं।
और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में बनेगी 84 और पंचायतें, आपत्तियां सुझाव मांगे। पंजाब केसरी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के हवाले से लिखता है, दुर्गम इलाकों का वास्तविक विकास कागजी योजनाओं से नहीं जमीनी हकीकत से संबंधित। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच हिमाचली सुरक्षित, केंद्र के संपर्क में। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी पर फैसले को दिल्ली गए मुख्यमंत्री। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मार्च से मई तक हिमाचल में बढ़ेगी गर्मी, कई क्षेत्रों में पारा सामान्य से ऊपर रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कांग्रेस का राज्यसभा प्रत्याशी पर मंथन तेज, मुख्यमंत्री की दिल्ली में आलाकमान से चर्चा जारी। नाहन में आज युवा संसद का होगा आयोजन, युवाओं को केंद्रीय योजनाओं के अलावा मिलेगी लोकतांत्रिक मूल्यों व संसदीय परंपराओं की जानकारी। किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर में जन औषधि सप्ताह शुरू। और आगामी वर्ष होने जा रही डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना को लेकर शिमला में प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।